તારીખ 31/9/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 380
આત્મશુદ્ધિ કહેશો હોય ઈચ્છા ઉપાય સાચું હોય આચાર્ય મહારાજ કહેતા કે ઈચ્છા ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય ઉત્કૃષ્ટ મેં નિશ્ચિત ઉપાય નિશ્ચિત મેં નિષ્ફળ નહીં હોને વાળા ઉપાય રામબાણ ઉપાય સીધી સાધી બાપ ન હોય કે વેદ જ્ઞાન સે હિ ધર્મથી અને સંવર્ગથી પ્રાપ્તિ ઉપલબ્ધિ હોતી હૈ દ્રષ્ટિકોણ છે કે સમયસર કરવાનું તો દેખે તો આચાર્ય મહારાજ ને સભી અધિકાર મેં વેદ જ્ઞાન કે પ્રાપ્તિ આચાર્ય મહારાજ કા ઇસ વિષય કો કહેને કા અપ્રતિમ સામર્થ્ય વેદ જ્ઞાન એક વિધિ હૈ એક કાર્ય પદ્ધતિ હૈ જિસે ધર્મ થી યાને આત્મશુદ્ધિ થી પ્રાપ્તિ હોતી વિધિ કા વિષય પ્રયોગાત્મક હોને છે ઉસકો વાણી મેં વચન વચન ગોચર કરના એ બહુ કઠિન હૈ જ્ઞાન મેં બહુ અલ્પ માત્રા મેં ઉસકી ભાષા મેં અભિવ્યક્તિ હોતી હૈ ફિર ભી કુંદકુંદ આચાર્ય જૈસે ઓર અમૃતચંદ્ર આચાર્ય જૈસે મહાન સમર્થ આચાર્ય માને ઇસ એક હી વિષય પર સભી અધિકારો મેં અપની મૌલિક પદ્ધતિ સે ઓર અપને સામર્થ્ય ઉસ વિષય કો બહુ સુંદર ઢંગ સે ખોલા હૈ यहाँ पर जो पद्धति ली है बहुत वैज्ञानिक है और बहुत अनेक प्रकार की विपरीत यानी विपर्यास को मिटाने वाली पद्धति है। तीन गाथा में गाथा को चलाकर दो गाथा का संक्षेप में उन्होंने ये कहा कि ज्ञान के पर्याय जिसको उपयोग कहते हैं वो नहीं निकाल उपयोग में किसी भी जीव को उसके वैभाविक पर्याय क्रोध आराज आदि जो है उसका अस्तित्व नहीं है और राग को और क्रोधादि विभाव पर्याय में ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। हमारे उपयोग को जो व्यतीत हुआ उसको नहीं चलते हुए हमारे उपयोग को हम इस उद्देश्य से देखें इस उद्देश्य को ध्यान करके देखें कि हमारे ज्ञान में क्या क्या है सेवा ज्ञान कुछ हो सकता है क्या तो उसके बहुत समीप में दूसरा गुण की जो चारित्र गुण के पर्याय राग क्रोध आदि है वो भी इसमें नहीं है उसका अस्तित्व भी इसमें नहीं है। उपयोग के अस्तित्व में रागादिक का अस्तित्व नहीं रागादिक के अस्तित्व में उपयोग का अस्तित्व नहीं दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है वो न्याय से आगम से युक्ति से समझ में आता है, लेकिन जब हमारा अनुभव तक हम उसको तलाश करते हैं तो उद्देश्य हम उनको नहीं अनुभव करेंगे नहीं, तो उसकी जो प्रतीति है उत्पन्न नहीं होगी। जानकारी के साथ साथ प्रतीति होनी जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए जरूरी है कि हमारी उल्टी प्रतीति चालू है, ज्ञान में राग होता है ऐसी प्रतीति चालू है। आप ये कहेंगे जैसा तो विचार ही नहीं किया हमने, प्रतीति के स्थान से आगे कैसे हो गई है, लेकिन हम लोगों को देख लीजिए कि राग मेरे में हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान में हुआ, वास्तव में तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ने राग को राग रूप भिन्न जानना चाहिए, कभी तो भिन्न ज्ञान होगा और भिन्न है इसलिए भिन्न जानना चाहिए या अनुभव करना चाहिए। ऐसा अनुभव करने के बदले हमें राग हो रहा है, मेरे में हो रहा है, मैंने किया मैंने भोगा, इस प्रकार का जो विपरीत अनुभव होता है, इस विपरीत अनुभव को आचार्य महाराज अपने शब्दों में ऐसा कहते हैं कर्ता कर्म अधिकार जो आगे चल गया, ये ज्ञान का अज्ञानत्व है। क्या है ये ज्ञान का अज्ञानत्व है, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का अनुभव करना, मात्र ज्ञान का अनुभव करना, वो ज्ञान का ज्ञानत्व है, और ज्ञान में अन्य द्रव्य भाव का अनुभव करना वो ज्ञान का अज्ञानत्व है। इसको मिथ्या ज्ञान कहें, उसको वास्तविक ज्ञान कहें, इसके साथ प्रतीति ऐसी रहती होने से जैसा अनुभव ऐसी प्रतीति है, तो उसको मिथ्या प्रतीति यानी मिथ्या श्रोता भी कहने में आती है। तो सभी प्रकार के विपर्यास को मिटाने के लिए किसी गाथा में क्या कहते हैं, क्या अर्थ है इसका, देखें शब्दार्थ चल रहा है अभी, ऐसा अविकृत ज्ञान, कैसा कि ज्ञान में क्रोधाधिक रागाधिक नहीं है, रागाधिक में उपयोग नहीं, ऐसा अविकृत ज्ञान जो जीव को होता है, जिस जीव को होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अति अन्य किसी भी भाव को नहीं करता। क्या कहा, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव को होता है, महाज्ञान मैंने जानकारी मात्र नहीं लेना, जानकारी हो जाती है शास्त्र पढ़ने से, जानकारी हो जाती है, कभी ऐसी भूल नहीं करना चाहिए कि जानकारी हुई वही ज्ञान हो गया, पहले हम नहीं जानते थे नहीं समझते थे, अभी समझने लगे जानने लगे इसलिए हमारा हमको ज्ञान हो गया, ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, कृपालु गुरु तो उस शब्द में कहते हैं, कृपालु गुरु मैंने श्रीमद राजचंद्र को भगवान की भाषा में उतने शब्द में संबोधित करते हैं। तो शास्त्र ज्ञान से निवेदा नहीं, अनुभव ज्ञान से निवेदा है। क्या कहते हैं, शास्त्र ज्ञान से धारणा हो जाती है, और पहले ऐसे धारणा नहीं होने से मैं समझता हूं ऐसा ही अभिनिवेश परलक्ष ज्ञान में प्राय हो जाता है, तो उससे निवेदा नहीं आता, क्योंकि अनुभव ज्ञान से निवेदा आता है। यहां कहते हैं कि ऐसा एक विपरीत अनुभव जब होता है तो उस जीव को फिर जीव नहीं कहा, आचार्य महाराज ने अपने शब्द बदल दिए। तब मन उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा है, क्या क्या कह दिया, ऐसा इतना जबरदस्त शब्द रख दिया कि वो उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा है, वो जीव नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, उसका अज्ञान मिट गया। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का अनुभव करने वाले को उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा बोल दिया, क्यों, वह अपने आप को ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, सिवा कुछ नहीं हूं। ये राजा के अपेक्षा से मेरे में होते हुए भी मेरे में, क्या अपेक्षा से मैंने क्या, जीव का चारित्र गुण का विभाव पर्याय है, इसलिए इसको किसी अपेक्षा से, प्रमाण की अपेक्षा से जीव का, कभी शास्त्रकार भी कहते हैं और जगत में तो मानते हैं अज्ञानी, तो उस रूप में तो मानते हैं, तो ऐसा अविपरीत ज्ञान में है, वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा में मुंह ऐसा अनुभव करने लगता है, तो उसको अपना ज्ञानोपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को मैं करता हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, मैं करता हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, तो कहने की आवश्यकता नहीं रही कि मैं भोगता हूं ऐसा भी अनुभव नहीं रहता, क्यों, कि जहां कर्तापने का अनुभव है वहीं भोक्तापने का अनुभव होता है, जहां भोक्तापने का अनुभव होता है वहीं कर्तापने का अनुभव होता है, यही मिथ्यात्व का स्वरूप है, कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का यही स्वरूप है, कि राम का कर्ता भोक्ता मानना एकत्व बुद्धि से, आधार बुद्धि से, तो इसको छुड़ाया क्या ज्ञान ज्ञान में शुद्धोपयोग रूप करण में तो उपयोग का आचरण नहीं है क्या, क्या ये आत्मा का आचरण नहीं है क्या, क्या ये शुद्धाचरण नहीं है क्या, और ये स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है क्या, शास्त्र जो कहेंगे उसको, उसको स्वरूपाचरण चारित्र शास्त्र में कहते हैं, जाति इसकी कौन सी है, यथाख्यात चारित्र की जाति है, ये शुद्धोपयोग हुआ इसकी जाति केवल ज्ञान की जाति है, अरे वहां केवल ज्ञान की लब्धि उत्पन्न हो जाती है, शुद्धोपयोग होता है तो केवल ज्ञान की लब्धि उत्पन्न हो जाती है। जिनेन्द्र भगवान ऐसा कहते हैं कि जो अनंत प्रकार के कर्म है ना, इसमें दर्शन मोह है वो सबका राजा है, और तो सब इनके सैन्य है, तो तुमने राजा को मारा है, हमें दृष्टि ने क्या किया है, राजा को मार दिया, वहां ऐसी गिनती करना जरूरी नहीं है कि अभी तीन चौकड़ी तो बाकी है, एक ही चौकड़ी गई, 25% ही चारित्र में शुद्धि हुई है, 75% तो शुद्धि हुई, ये दृष्टि कौन इसके महत्व को समझने नहीं देगा, ये करणानुभव का एक विभाग है, जानने का विषय है, जानकारी कर लेना, इससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है, लेकिन अध्यात्म के दृष्टि कौन से इसका बहुत महत्व है, इसलिए वहां राजा को जीत लिया, सैन्य स्वयं ही सरेंडर हो जाएगा, सैन्य की कोई गुंजाइश नहीं हुई तो वो जीव राजा को फिर हरा दे, ऐसी कोई परिस्थिति होने वाली नहीं है। और देखिए इसी ग्रंथ की 143 नंबर की गाथा निकाल लिया, अभी भी हमारे भावनगर में तीन का स्वाध्याय चल लिया। और दंशन गुरु धम्मों में भी हमने उसका आधार दिया है, तो समय दृष्टि की महिमा ऊपर के गुणस्थान में विराजमान आचार्य कितनी करते हैं, क्या मुमुक्षु करें उसमें तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद आचार्य महाराज कितनी करते हैं बढ़िया। तो जो पक्षांतिकरण होता है उसको सकल समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ आखिरी तीन पंक्ति इसको क्या लिखता था कि ठीक आके ब्रह्मात्मा क्या पक्षांतिकांत होकर के शुद्ध की ओर जिसको प्राप्त हुआ उपलब्ध हुआ उसकी बात करते हैं। ब्रह्मात्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर मैंने निर्विकल्प हुआ, तो बहुत योग में पहला शब्द क्या लिया निर्विकल्प होने से, परमात्मा शब्द लिया है शुद्धात्मा ही नहीं लिया वहां, क्या 183 में तो शुद्धात्मा कहा लेकिन यहां तो परमात्मा कहा। आचार्य महाराज ने इतनी महिमा गाई इसकी तो शाबाश धन्यवाद तुझे हम देते हैं कि तुम हमारी जाति में आ गया, हमारी पंक्ति में तू बैठ गया, भले ही हमारी समृद्धि अधिक है आचार्य महाराज की समृद्धि अधिक है लेकिन तुम हमारी पंक्ति में आनंद मत का भोजन करने वाला है, एक ही पंक्ति में हमारी पंक्ति में बैठा हुआ हम देखते हैं, तो उसको परमात्मा बोला, ज्ञानात्मा बोला, प्रत्येक ज्योति आत्मख्याति अनुभूति मात्र समय सार इतने शब्द विशेषण लगा दिए, इतना भावा गया है आचार्य महाराज को अमृतचंद्र आचार्य महाराज को। जो अमृतचंद्र आचार्य महाराज तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग वाले के प्रति इतना भाव आ जाता है तो मनुष्य को कितना आना चाहिए, बस हिसाब लगा देना, बनिए लोग तो हिसाब लगाने में अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, तो हिसाब लगा देना चाहिए।
गोमक सार में तो जिन की व्याकरण लगती है,
तो गोमक सार नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का एक करुणानुयोग का महान ग्रंथ है, दिगंबर आचार्यों के साहित्य में, और इसकी टीका पंडित प्रगत कोयल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्र का नाम के किया है। उसमें तो लिखते हैं कि जो कोई जीव सम्यक दर्शन के पहले के कुछ समय में कर्म लब्धि में आता है, कौन आता है कर्म लब्धि में, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पाप के समय में होने वाला है, कर्म लब्धि के परिणाम पूरे होते ही उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उसको वहां जीन कहा, क्या कहा परमल जी साहब ने उसको जीन बोला है, तो वो तो क्या है उनकी पद्धति वहां को करके समझाने की है, वो खुद ही प्रश्न उठा लेते हैं कि इसको जीन क्यों कहते हो, जीन का हम कह रहे हिंदुस्तान में जो पहुंचते हैं उसको जीन कहते हैं, तो कहीं उसने जिनत्व को प्राप्त किया है इसलिए हम उसको जीन कहते हैं, ऐसा उत्तर दिया है। देखिए ज्ञानियों ने आचार्यों ने कितनी महिमा की है, तो महिमा करने लायक है, आदर करने लायक है, सत्कार करने लायक है और भक्ति करने लायक है, वंदन करने लायक है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग होने से मोक्ष मार्ग में धर्म में तीनों की एकता होने से भले ही जगन्य मात्रा में हो लेकिन वो चारित्र संपन्न है, चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, चारित्र का जहाँ अधिकार चलता है इसकी मुख्यता की चर्चा जिस तीन शास्त्रों में चलती है वहां उसकी गिनती नहीं करते। लेकिन ऐसा सब उठा लेना मुमुक्षु के लिए उचित नहीं है, यानी इस पर वजन दे देना ये भी मुमुक्षु के लिए उचित नहीं है, ऐसा संकेत आचार्य महाराज ने समयसार शास्त्र में खुद ने महिमा करके ये संकेत कर दिया है, स्वयं ने महिमा कर दी। इसलिए मुमुक्षु को तो महिमा करनी है ही।
महिमा में मर्यादा नहीं होनी चाहिए, गुण स्थान अनुसार।
कल रात्रि के स्वाध्याय में ये बात चली थी कि गुण स्थान का जो तफावत है, अंतर है, वो इन दोनों में है। क्या हमारा संबंध इन दोनों के बीच में क्या तफावत है ये हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन हमको तिरने में वो निमित्त है कि नहीं है ये है। तो ये प्रश्न आप अवश्य कर सकते हैं कि तिरने में निमित्त है इसमें, इसका ज्यादा निमित्त हो सकता है, इसका कम निमित्त हो सकता है, इसलिए इसकी महिमा कम करो इसकी ज्यादा करो, तो वो हिसाब झूठा है, छोटा हिसाब है। निमित्त तो एक सा है, निमित्त में एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है। ये क्रांतिकारी गाथा है आत्मसिद्धि शास्त्र में, इसीलिए तो जब ये शास्त्र लिखा गया तो वो सबों को पढ़ने को नहीं देते थे, उसकी आज्ञा के बिना किसी को नहीं देना, कृपालु देव के बिना आज्ञा किसी को पढ़ने का, उसके नकल भी करना उस पर कंट्रोल रखा गया था उसका। क्या तो उसमें ऐसी गाथा है कि प्रत्यक्ष सदगुरु समझ नहीं परोक्ष जिन उपकार, तो एक छदमस्त है सदगुरु, छदमस्त है और जिन है वो केवल है, तो बराबर तो नहीं उस क्या इसके सम नहीं, बराबर भी नहीं। ऐसे लक्ष्य हुए बिना हुए न आत्मविचार। क्या बोले, अगर तुमको केवल का तो युग चला गया 2500 साल हो गए, अब जो छदमस्त सजीवन मूर्ति रह गई उसमें दो विभाग है, एक भावलिंगी लग्न दिगंबर संत होते हैं मृगन और एक सम्य दृष्टि श्रावक चतुर्थी हम पंचम स्थानवर्ती कहते हैं, दोनों सजीवन मूर्ति हैं, दोनों में तिरने का निमित्तत्व होता है। जिसकी प्रत्यक्षता है इसके बराबर परोक्ष कोई नहीं है। जब जिनेन्द्र नहीं है तो फिर ऊपर के गुणस्थान वाले का हिसाब करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे समझ या सूझ नहीं आई तो उसका कौन सा क्लास है कि उसको आत्महित का विचार भी नहीं आया है, इस वर्ग में हम उसको रख देते हैं, ऐसा कहते हैं आत्म कल्याण का उसको विचार ही नहीं आया। क्यों, कि डूबने वाला कभी ये नहीं देखता, जो डूबता है उसी वक्त वो कभी नहीं देखता कि अगर मुझे ये छोटा सा पतिया जो सड़ा हुआ है ये मिल गया तो मुझे नहीं तिरना, स्टीमर आ गई तो बैठूंगा, मुझे तो स्टीमर से तिरना है, भले ही मैं मर जाऊं डूब जाऊं, ऐसा कभी डूबने वाले को होता ही नहीं। अगर होता है तो पता चलना कि वो डूब रहा है उसका भी उसको पता नहीं है, फिर तिरने का तो हो गया ही था। देखिए पानी में अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो डूबने की परिस्थिति मरने की परिस्थिति हो जाए तो हमारे गुजरात में तो ये कहावत है कि डूब तो मानस तरणा ने पकड़े, पाटिया ने नहीं, तरणा मैंने तिनका तरणा को पकड़ेगा, ये इनकी हालत है। तो ऐसा कोई कहेंगे सम्यक दृष्टि है क्या है उसे तो गृहस्थ है चतुर्थ गुण स्थान है, तुमको यही पता नहीं है कि मैं डूब रहा हूँ अभी, क्या कहेंगे कि तुमको यही पता नहीं है कि मैं भव समुद्र में कि मध्य में डूब रहा हूँ उसका पता तुझे नहीं है, तो किरने का विचार तुझे कहाँ से आएगा। ये कहते हैं यहाँ पर कि विपरीत ज्ञान ऐसा होता है, गुरुदेव कहते थे कि एक भी विपर्यास रहता है वहां तक सम्य दर्शन नहीं होता, एक भी विपर्यास रहता है तो इसमें क्रम विपर्यास भी आ गया, यहाँ तो क्रम का क्रम की सूचना है कि भेद ज्ञान कैसे करना, कि पहले राजा दिशु प्रजा दिशु भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना मैंने राग में ज्ञान स्वरूपी आत्मा राग से और देहादि से भिन्न हूं इतना विचार विकल्प करना वो भेद ज्ञान का स्वरूप नहीं है। समझ में बात आती है तो क्या है कि ऐसा विचार चलने लगता हूँ, वेद ज्ञान से संवर के या अनुभव की प्राप्ति है तो हम वेद ज्ञान करने के लिए ऐसा विचार करने लगे, ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ने लगे बार बार समय सार पढ़े और बार बार जो पढ़े उसका चिंतन करें, उसी का नाम वेद ज्ञान नहीं है, खचित नहीं है अक्षर नहीं है, इसका नाम वेद ज्ञान मात्र विकल्प है क्या
ये तो अधिकार चलेगा यही कहेंगे आचार्य महाराज, ऋषि का स्वाध्याय करेंगे तो क्या कहना चाहते हैं आप जो ऐसा विकल्प वेद ज्ञान नहीं, ऐसा विचार वेद ज्ञान नहीं, ऐसा चिंतन मनन वेद ज्ञान नहीं, तो फिर वेद ज्ञान क्या है ये तो बात कहेंगे आचार्य महाराज टीका में उसको खोलेंगे। तो आचार्य महाराज ने टीका में ये बात खुली है कि तुम किसका अवलंबन से वेद ज्ञान करते हो, बहुत साइंटिफिक सिस्टम से उन्होंने टीका लिखी है, वैज्ञानिक तौर से बात लिखी गई है। वास्तव में देखिए टीका की पहली पंक्ति क्या है, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये बड़ा विज्ञान चल रहा है, जैसे कोई साइंस का प्रोफेसर हो पदार्थ विज्ञान की बातें करते हैं वैसे ही आचार्य महाराज यहां से शुरू करते हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये वस्तु स्थिति की एक वास्तविकता है, यानी हम एक आत्मा है, आत्मा रूप एक वस्तु है, एक जीव वस्तु है हम, तो हमारे स्वरूप के अलावा किसी भी दूसरी चीज दूसरी वस्तु हमारी नहीं है। जहां भी अपना तो होता है देख लेना, वहां आप विचार नहीं करते, ये पैसा मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, इसमें विचार नहीं करते, अनुभव करते आप, ऐसा सिर्फ विचार नहीं करते, ऐसा आप अनुभव कर रहे हो कि नहीं, आप आपके अनुभव को तलाश करके ऑब्जर्व करके समझ लेना कि जब आप अनुभव उल्टा करते हैं और इसका इस अनुभव उल्टा अनुभव को टालने के लिए निवृत्त करने के लिए अभाव करने के लिए सुलटा अनुभव चाहिए या सुलटा विचार चाहिए, कोई तलवार मारने को आएगा इसके सामने आप लकड़ी या तलवार लेंगे क्या लेंगे, लकड़ी के सामने लकड़ी लोग बराबर है लेकिन तलवार के सामने लकड़ी क्या काम में आएगी, पिस्तौल के सामने लकड़ी क्या काम में आएगी, आप तो उल्टा अनुभव कर रहे हैं कि दे मेरा है इसमें असाता होती है तो मुझे हुई, ये अनुभव के सामने सुलटा अनुभव चाहिए या सुलटा विकल्प चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा साधन होना चाहिए बताइए। व्यापार में भी आपको स्पर्धा करनी होती है, करते कि नहीं, अपने बराबरी के जो व्यापारी है उसके सामने स्पर्धा करते हैं तो कैसे करते हैं कि इसका जैसा शोरूम इसके बड़ी अपना इसके जितनी पूंजी लगाई उतनी कम से कम अपने लगाओ, इसके बराबरी क्या हुए या वो अच्छे अच्छे अपनी दुकान जमा के बैठे अपन फुटपारी पर उसके सामने बैठ करके स्पर्धा कर पाएंगे क्या, फुटपारी पर धंधा वही का ही चलता है, इसी का ही चलता है, क्या उसकी बराबरी कर सकता है क्या, क्यों कि वो जो बैठा है अंदर में वो समझता है कि फुटपारी वाला घरा गिराज अंदर आने वाला नहीं है, अंदर आने वाला फुटपारी से लेने वाला नहीं है, तो उसको कोई पीड़ा नहीं होती, भले फुटपारी पर वही चीज वो देखने वाला हो और कम भाव में देखने वाला हो, लेकिन जो घरा शोरूम में आकर के लेता है वो फुटपाथ पर से नहीं लेता, तो वहां बराबरी करते हैं अपन हर जगह वहां बराबर बराबरी करते, पिस्तौल के सामने पिस्तौल रखते हैं, तलवार के सामने तलवार रखते हैं, इधर विपरीत अनुभव के सामने हम विकल्प को चलाते हैं, क्या करते हैं अनुभव करते विपरीत और चलाते इसके सामने साधन बनाते विकल्प को विचार को, कैसे सफलता मिलेगी बताइए, एक सफलता मिलने की कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती, विपरीत अनुभव के सामने है विपरीत अनुभव ही चल सकता है, दूसरा कोई साधन कोई बैठता नहीं, कोई उसका दूसरा पर्याय नहीं हो सकता, कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा विपरीत ज्ञान मैंने अनुभव जो होता है तो उसके सामने अविपरीत अविपरीत अनुभव है वो विपरीत अनुभव को मिटाएगा, वो कैसे अनुभव करना तो आचार्य महाराज प्रयोग की थियोरी कहते हैं, बात तो जो होती है वो व्याख्या या परिभाषा में ही होती है, यानी कहने में तो थियोरेटिकल परिस्थिति में आना पड़ता है, मतलब प्रयोग की बात करें तो भी उसकी थ्योरी बनानी बतानी पड़ती है, तो कहते हैं कि वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है,
यहाँ वस्तु माने भूत
नहीं प्राप्त लेना है पूरा
बात तो चल रही है, राग और ज्ञान भी एक साथ होने की बात हो रही है,
अच्छा प्रश्न
ज्ञान और शारीरिक
ठीक नहीं है, आपका प्रश्न बहुत बढ़ जाए, आचार्य महाराज ने बात पर्याय से कही गाथा में और टीका पर आचार्य महाराज वस्तु पर्याय से बात नहीं कह करके यहाँ से वस्तु से क्यों शुरू कर आगे तो कहेंगे, आगे तो वो ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन वस्तु कहने का कारण यही कि जो पर्याय बुद्धि जीव है वो तो पर्याय मात्र को वस्तु के रूप में ग्रहण कर लेता है, जैसे राग एक पर्याय है लेकिन अनुभव क्या है कि मैं पूरा रागी हूं, आपके प्लेट में या मकान में कोई चोर चोरी करने को आया आपके अनुपस्थिति में आया था लेकिन आप आ गए तो चोर पकड़ा गया, आप कभी ऐसा कहेंगे कि ये तो चोरी तो इनकी पर्याय थे वो कहां चोर है, ऐसा कभी बहुत विचार करते हैं क्या, चोरी के जो भाव थे वो तो इनके पर्याय में थे ना, इनके गुण द्रव्य में तो है ही नहीं जैन दर्शन के हिसाब से वस्तु विज्ञान के हिसाब से, लेकिन आप उनको चोर कहेंगे, चोरी की पर्याय वाला जीव ही कहेंगे ये चोर है पकड़ो उसको पुलिस को बुलाओ उसको सौंप दो क्योंकि वो चोर है, ऐसे राग होता है तो मैं रागी हूं, क्रोध होता है तो मैं क्रोधी हूं, ऐसा अनुभव करते हैं एक पर्याय मात्र में अनुभव करते हैं पूरा का पूरा, तो आचार्य महाराज उसी पद्धति से समय सामने समझाया है सिंधु भगवान ने पर्याय प्रधान ग्रह की विदीक्षा करके यहां अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का एक अपनी खास शैली पद्धति को यहां रखी है समय सार में। इसका ये सबूत है दूसरी गाथा। पहली गाथा तो मांगलिक की है, दूसरी गाथा में वो अपने विशेष रूप करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जीव चरित दर्शन ज्ञान सुस्थित स्वसमय निश्चय जानना पुदगल स्थित कर्म पुदगल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। तो चरित्र दर्शन ज्ञान तो पर्याय है, दर्शन ज्ञान चरित्र की जो पर्याय है उस पर्याय में जो स्थित हुआ है उसको हम स्वसमय कहेंगे। यहाँ पर हमारी शरीर समझ लेना, और जो उद्गल का अवलंबन लेके वहां स्थित हुआ है वहां उसके आधार में पड़ा है उसको हम परसमय कहेंगे। शास्त्र में ये हमारी पद्धति है। पद्धति पद्धति में क्या अंतर है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जो शुद्धात्मा में स्थित है वो स्वसमय है ऐसा नहीं कहा। फिर से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर के शुद्धात्मा में स्थित हुआ उसको हम स्वसमय कहेंगे ऐसा नहीं कह करके जो चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो स्वसमय है ऐसा हम कहेंगे। पर्याय के प्रधानता से तू कह रहे हैं ये इसका सबूत है अपनी शैली का पद्धति का। एक से एक बात कहने में बहुत गहराई है। ऐसा नहीं करके ऐसा क्यों कहा? द्रव की प्रधानता से तो ऐसा कहना चाहिए कि द्रव का अवलंबन पर्याय लेती है, पर्याय द्रव का अवलंबन कभी नहीं लेती है। लेकिन बात यहां से क्या चालू किया कि जो चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है ऐसे जीव को हम स्पष्ट समय कहेंगे। ऐसे पर्याय प्रधानता से क्यों बात कही? क्योंकि शून्य वाला पर्याय प्रधानता में खड़ा है। इसलिए शैली है सारे समय सार की है शैली। आखिर में देखिए आप सुरता की शक्ति जो है वो तो जीव का निश्चय स्वरूप है। एक एक शक्ति है तो जीव का निश्चय स्वरूप है। लेकिन 4747 शक्ति की परिभाषा पर्याय प्रधान की है कि वो शुद्ध पर्याय रूप कैसे परिणमने वाली शक्ति है वो तो पर्याय प्रधान एक एक शक्ति की परिभाषा ही पर्याय प्रधान की है। क्या दृष्टिकोण है आचार्य महाराज का कि उन्होंने अज्ञानी जीव को सामने रखा है, ज्ञानी को नहीं रखा है, दुर्दृष्टि वाले को नहीं रखा है, पर्याय दृष्टि वाले को सामने रखा है। और उसकी पर्याय दृष्टि कैसे मिटेगी कि इनकी भाषा में मैं बात करूंगा तो मिटेगी तो वो समझेगा, अपने मेरी भाषा में वो समझने वाला नहीं है। इसलिए वो शैली रखी। इसलिए उन्होंने बहुत सी जगह ये शैली लिया है, यहां भी ज्ञान और राग की बात लिया है। ज्ञान और राग तो पर्याय है, तो क्या भेद ज्ञान राग और ज्ञान के बीच पर्याय पर्याय के बीच कराने का अभिप्राय है क्या? इधर ऐसी बात नहीं है। अनुमान पद्धति कहां से शुरू होती है इस विषय की गहराई में अगर हमें जाना हो तो प्रश्न बहुत सुंदर निकाला है नेमचंद जी ने कि इसकी गहराई में हमें जाना।
मुझे सुनने की बहुत ही अभिलाषा था
जी,
इस गाथा को सुनने की बहुत दिन थी हमारी
अभिलाषा।
तुम
लोगों ने तो 6 गाथा बताई थी, मैंने कहा नहीं
जाना है, मुझे सुनने की बहुत अभिलाषा।
तो क्या होता है कि ये विधि का विषय चल रहा है। क्या चल रहा है? विधि काय में होती है, द्रव्य में होती है या पर्याय में होती है? पर्याय में होती है। विधि स्वयं पर्याय है। अब 15 गाथा देखिए, दूसरा स्वरूप में देता हूं, तीसरा स्वरूप देता हूं। 15 गाथा में क्या कहते हैं? विधि की गाथा है, 15 गाथा। जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष व संयुक्त ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, निर्विकल्प स्वामी जी के दर्शन है। मां निश्चय से समस्त जीवशासन की अनुभूति है, ये सम्यक दृष्टि ही जीव शासन है, समस्त जीव शासन पदना नहीं दिया, चतुर्थ गुण स्थान वाला है इसलिए, और जिन शासन का पाचन पाचन और जिन शासन ऐसा नहीं कहा, ये समस्त जिन शासन है ऐसा कहा। यहां भी महिमा किया आचार्य महाराज ने, स्वानुभूति संपन्न वाले को समस्त जिन शासन बताया।
और एक बात, जीव अधिकार है, वो संभव अधिकार
है। हाँ वही बात है, अब दोनों जगह विधि की बात चल रही
है,
की अपेक्षा चल रही है, अभी एक
गाथा है विधि की, वो परिणाम हुआ जीव हमारे अधिकार में आया है।
क्या होता है, कभी तत्व नहीं बदलता, कभी सिद्धांत नहीं बदलता, जो बात कहनी है वो दूसरे पहलू से कहेंगे, अनेक पहलू से कहेंगे, लेकिन वो की वो बात कहेंगे। हम कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, पुत्र है, लेकिन मेरे पिता का एक पौत्र है। क्या मेरा पुत्र है लेकिन मेरे पिता का ये पौत्र है, पर परिस्थिति नहीं बदलती कहीं, पुत्र और पौत्र दो चीज नहीं है, वो कि एक एक के एक ही आदमी को बताने की बात है। तो जीव को बताओ, एकता पाने को बताओ, स्वभाव को बताओ, विधि को बताओ, तत्व कहीं नहीं बदलता, एक ध्यान में रखने लायक चीज है। यहां भी विधि का विषय चल रहा है 15 गाथा में, इधर 181-182 त्रासी में भी विधि का विषय चल रहा है। कैसे मैं इसमें क्या क्या सामने है, मैं वो कहना चाहता हूं कि जिन शासन की अनुभूति वो तो महिमा किया समय दृष्टि का, उतना ही मुझे दिखाना है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। तो श्रुत ज्ञान तो पाठ ज्ञान की पर्याय में एक प्रकार के ज्ञान की पर्याय है। क्या क्या आचार्य महाराज को पता नहीं है, अमृतचंद्राचार्य महाराज को भावश्रुति, क्योंकि यह तो जीव अनुभव अनुभूति वाला नहीं है ना, इसलिए भावश्रुति लिया है। तो भावश्रुत ज्ञान भी एक पर्याय है, क्या है पर्याय, उसको नहीं कह करके आत्मा क्यों कहते हैं, यहां भी उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा क्यों कहा, विपरीत ज्ञान जिसको हुआ उसको शुद्ध उपयोग हुआ, उसको शुद्धात्मा कहा, यानी आत्मा कहा, पर्याय को क्यों आत्मा कहते हैं। ये ग्रंथ तो द्रव्य दृष्टि का है, द्रव्य दृष्टि कराने के हेतु से है, लेकिन पर्याय को आत्मा जगह जगह क्यों कहते हैं। दूसरी गाथा से लेकर के 15 गाथा ले लो, और भी बहुत कुछ सबूत है, हमारी तो उसकी स्तुति शेर नहीं है कि कितनी गाथा बताए आपको, लेकिन जगह जगह पर 203 से लेकर के निर्जला अधिकार 206 गाथा लिख लीजिए। ये ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, या तो प्रकृति करता है वो ज्ञान आत्मा है, अनुसरण करता है वो ज्ञान आत्मा है, सबको ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र, ये समय सार सारा समय सार ज्ञान मात्र में डर दिया। तो इसका एक स्पष्टीकरण वो है कि जब पदार्थ के बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस जिसको कहते हैं, पदार्थ के बंधारण को जब हम नहीं समझ सकते हैं, तो बंधारण को समझाने के लिए द्रव्य पर्याय उत्पाद हुए ध्रुव द्रव्य क्षेत्र का भाव इसको प्रयोग को समझना आवश्यक है। जब पदार्थ विज्ञान को अच्छी तरह हम समझ लें, तब फिर अध्यात्म के प्रकरण में इस भेद को संक्षेप करके अभेद अनुभव करने से ही अध्यात्म अनुभव होता है, अध्यात्म तत्व का अनुभव होता है, और उस अनुभव को भी अध्यात्म कहते हैं। दो ही चीज अध्यात्म के विषय में है, एक अपना त्रिकाली शुद्धात्मा है, परमात्मा है, ये अध्यात्म तत्व है,
जो अवलंबन के योग्य होने से, अभी मैंने आधार लेना, और इसके आधार लेने वाले जो भी शुद्ध पर्याय है, चाहे ज्ञान के दर्शन के चारित्र के अनंत गुण के, इसको भी अध्यात्म कहते हैं। बस बाकी के सब विषय आगम के विभाग में जाता है, अध्यात्म में नहीं आता। तो जो विभाग है उसको समझ लेना। तो अध्यात्म के प्रकरण में ये ग्रहु पर्याय वाला जो आगम का विषय है, वहां उसका लेवल नहीं है। आगम जिस लेवल पर बात करते हैं, उस लेवल पर अध्यात्म बात नहीं करती है। अध्यात्म में आगम की अपेक्षा कभी नहीं घुसाना, आगम में अध्यात्म के अंदर घुसाना, दोनों का लेवल अलग अलग है। एक ट्रेन पटरी पर चलती है, एक ट्रेन हवाई जहाज जो है हवा में चलता है, दोनों का लेवल ही अलग है। जहां तक इस बात हम नहीं समझेंगे, तो एक दूसरे में हम हमारे जो धारणा है, इसलिए एक विषय में दूसरा विषय हम लगा देंगे, फिर हमको समाधान नहीं होगा। कि यह पर्याय तो आत्मा क्यों कहा है, ऐसा आपको प्रश्न हुआ कि राग और ज्ञान का पर्याय, और ये टीकाकार आचार्य वस्तु से चालू करते हैं, ऐसा क्यों? ये भी प्रकरण अध्यात्म का चलता है, समर है वो शुद्ध पर्याय है, वो अध्यात्म का प्रकरण चलता है। अध्यात्म के प्रकरण में द्रव्यगुण पर्याय का भेद तो निवारण हो जाता है, यानी एबोलिश हो जाता है, रहता नहीं तभी अध्यात्म पैदा होता है, इसका लेवल ही ऐसा ही है। इस विषय में और कई बातें हैं तो करने का अब समय नहीं है।
इसमें प्रदेश भेद की बात आती है, राग और ज्ञान के अवगोध में प्रदेश भेद है, और इसमें प्रदेश भेद की बात समझ नहीं।
देखो हम उतना खुलेंगे उतना खुलेंगे,
प्रदेश भेद
तो जितना भी प्रश्न है आपको भी लिख के भी लाना, हम सब पता करेंगे। उस पर हमने काफी अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया है। तो क्या है कि कितनी कितनी बातें हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे कि इसमें भेद अभेद में कैसे लेना है, अध्यात्म के प्रकरण में अभेदता क्यों लेनी है, कैसे लेनी है, और कहां से ये शुरू होता है अध्यात्म, इसकी थोड़ी और स्पष्टीकरण करके फिर तो इस गाथा को पकड़ करके ही आगे चलेंगे। इसमें हमारा स्पष्टीकरण है, इसके अनुसार आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। आज का जो समय समाप्त हो गया।